सुबह का वक्त था। नित्या अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी और वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पता नहीं एकटक सीलिंग को घूरते हुए नित्या क्या सोच रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, तब कहीं जाकर उसकी तंद्रा टूटी और करवट लेते हुए उसने अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया ताकि देखने वाले को लगे कि वो सो रही है। अब वो अक्सर ऐसा ही करने लगी थी। अपने आसपास लोगों की मौजूदगी अब उसे घुटन का एहसास करवाती थी। अकेलापन भाने लगा था। कम से कम खुद के सामने अपने जज्बातों को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई समझे ना समझे, लेकिन वो तो समझती थी। दुख बस इस बात का था कि कोई और उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सोचते हुए नित्या की आंखों में भरे आंसू आंखों से फिसलकर पिलों में समा गए। कुछ सेकंड बाद उसे अपने सर पर किसी के स्नेह भरे हाथ के ठहरने का एहसास हुआ और उसने अपनी आंखों को कस के भींच लिया, ब्लैंकेट पर अपनी मुट्ठियां कस लीं। नित्या बेटा, अब आप अपने दादू से भी नाराज हैं, हमें देखेंगी भी नहीं। दादू की उदासी भरी भारी आवाज नित्या के कानों में पड़ी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसकी घोटी घोटी सिसकियों की आवाज उस सन्नाटे में गूंजने लगी। नित्या के शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। इतने दिन उसने सब्र रखा, लेकिन अब उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका नाजुक दिल टूट रहा था और दर्द आंसू बनकर आंखों से बह रहा था। नित्या को यूं रोते देखकर दादाजी परेशान हो गए। बिट्टो, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? आप तो हमारा बहादुर बेटा है ना, इधर आइए दादू के पास। दादाजी की आवाज भीग गई थी। नित्या उनकी कमजोरी थी, उसके आंसू देखकर वो बेचैन हो गए थे। उन्होंने नित्या को उठाना चाहा, वो एकदम से उठकर उनके सीने से लग गई। आंखों से बहते आंसू अब उनके कुर्ते को भिगोने लगे। क्या हुआ बेटा, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? आपके दादू हैं ना आपके साथ, हम सब ठीक कर देंगे। आप खुद को संभालिए, रोना बंद कीजिए। आप जानती हैं ना हम अपनी बिट्टू से कितना प्यार करते हैं। दादू ने कुछ देर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उसे खुद से दूर किया और अपनी हथेली से उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया। रोते रोते नित्या की हिचकियां बंद गई थीं। दादाजी ने उसे पानी पिलाया। एक सिप पीकर उसने ग्लास साइड हटा दिया, भीगी पलकों को उठाकर उन्हें देखा और सिसकते हुए रुंधे स्वर में बोली,
दादू दादू, मुझे यहाँ ना नहीं रहना, मुझे मानव के पास जाना है। दादू, डैड को कहिए ना मुझे जाने दें, मुझे उसकी और आई की बहुत याद आ रही है। हम ले चलेंगे बेटा, आपको जहाँ भी जाना है हम ले चलेंगे, बस आप रोना बंद कीजिए। देखिए तो रो रो कर आपने अपना पूरा चेहरा लाल कर लिया है। आप मुझे मानव के पास ले चलेंगे दादू? नित्या की आंसुओं से भीगी आंखों में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। बिल्कुल ले चलेंगे, आज संडे है, आपके मानव घर पर ही होंगे, हम अभी ही आपको उनके पास ले चलेंगे। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए, हम विधान से बात करके आते हैं। डैड मना कर देंगे। नित्या एक बार फिर मायूस हो गई, आंखों में डर समा गया। दादू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। आपके दादू आपके साथ हैं, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आज विधान भी आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे बीच जो बात हुई आप किसी को नहीं बताएंगे। आपके डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपको मानव से मिलवाने लेकर जा रहे हैं, हम आपको अपने दोस्त के घर लेकर जा रहे हैं। विधान को हम यही बताएंगे, तो अगर आपसे पूछें तो आप भी यही कहेंगे, समझ गई ना आप? नित्या ने झट से सर हिलाया, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखते हुए घबरा कर बोली,
बट दादू, अगर डैड को इस झूठ का पता चल गया तो वो हमारे साथ गार्ड भेजेंगे, वो डैड को सब बता देंगे, फिर वो आपसे भी गुस्सा हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, जाइए जाकर नहाकर तैयार हो जाइए। दादाजी ने प्यार से उसके गाल को थपथपाया। नित्या खुशी से चहकते हुए उनके गले से लग गई।
थैंक यू सो मच दादू, यू आर द बेस्टेस्ट दादू इन द वर्ल्ड, आई लव यू।
नित्या इतनी खुश और एक्साइटेड थी कि झट से उनके गाल पर किस कर दिया। जब से नित्या वापस आई थी, आज पहली बार वो नित्या को इतना खुश देख रहे थे, और वजह था मानव, जिसे वो जानते तक नहीं थे, लेकिन इन दिनों इतना समझ गए थे कि वो अजनबी उनकी पोती की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता था। चंद दिन उसके साथ बिताकर नित्या जैसे उसकी होकर रह गई थी। उसके आंसुओं की वजह भी वो था और मुस्कुराहट का कारण भी वही था। वैसे तो वो एक अनजान था जिसने नित्या को बचाया और उन दिनों उसे अपने घर में महफूज रखा, लेकिन नित्या ने उससे दिल का बहुत गहरा रिश्ता जोड़ लिया था। बस जो नहीं जानते थे वो ये कि मानव कैसा लड़का है और उसके तरफ से भी यही है, या बस नित्या ही उसके लिए तड़प रही है। नित्या उठकर बाथरूम में भाग गई। दादाजी कुछ देर वहीं बैठकर सोचते रहे कि आगे क्या होगा और कैसे, फिर उसके रूम से बाहर निकल गए। नीचे आए तो मिस्टर शेरगिल उन्हें डाइनिंग एरिया में न्यूज़पेपर हाथ में पकड़े बैठे नजर आए। सर्वेंट खाना टेबल पर लगाकर साइड में खड़े थे। दादू ने उन्हें आंखों से कुछ इशारा किया तो वो सर झुकाकर वहां से चले गए।
अब वहां बस मिस्टर शेरगिल और दादाजी ही रह गए थे। किसी की आहट सुनकर मिस्टर शेरगिल ने निगाहें न्यूज़पेपर से हटाकर दादू को देखा, नजरें पीछे घुमाई। आज वो अकेले ही आए थे। ये देखकर मिस्टर शेरगिल के एक्सप्रेशन जरा बदले। आपकी पोती कहाँ है, अपने साथ नहीं लाए उसे? लहजा कठोर था और आवाज भारी। दादाजी भावहीन से बोले, क्या करेंगे लाकर, जब दो चार निवाले से ज्यादा वो खाती ही नहीं है। देखा नहीं है आपने शरीर कितना कमजोर हो गया है उनका। तो समझाइए अपनी पोती को कि ये जिद छोड़ दे, इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। जिद वो कर रही है या आप कर रहे हैं विधान? दादाजी के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी के मिले जुले भाव उभरे। वो अभी बच्ची है और आप उनके साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं, उन्हें घर में बंद रहने पर मजबूर कर रहे हैं, उन्हें किसी से मिलना तो दूर बात भी नहीं करने देते। अकेले ही अकेले घुट रही है वो, तकलीफ में है, लेकिन आपको अपने गुरूर और अहंकार के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। किस बात की सजा दे रहे हैं आप? वो घर छोड़कर भाग गई थी, इसीलिए उनके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं ना? तो कभी अपने गुस्से और अहम को दूर रखकर ये सोचने की कोशिश की है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? वजह आप थे, आपकी इसी जिद ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। ना आप उन पर शादी का प्रेशर डालते और ना ही वो घर छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठाती। आपको एहसास भी है कि अगर वो घर से नहीं भागती, तेज से उनकी शादी हो जाती तो क्या होता उनका? उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बची क्योंकि उन्होंने वजह रहते सही फैसला लिया, वरना आपने तो अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी और खुशियों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दादू अब तक चुप थे, इन बातों को अपने दिल में छुपा कर रखा था, लेकिन आज जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो उन्होंने मिस्टर शेरगिल को आईना दिखा दिया, जो दिल में था सब कह दिया, उन्हें उनकी गलतियां बताने लगे। दादाजी ने सच ही कहा था, मिस्टर शेरगिल के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे, लेकिन वो स्थिति में नहीं थे कि कुछ कह पाते। विधान, आप उस बच्ची को बहुत कठोर सजा दे रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह गलत नहीं थी, उसमें गलती आपकी भी थी और उनसे ज्यादा बड़े गुनाहगार आप हैं। उसके बावजूद आपने उन्हें इस घर में कैद करके रख दिया। वो इस घर की बेटी है, कोई पक्षी नहीं जिसे आप पिंजरे में बंद रखें। देखी है आपने उनकी हालत, ना उन्हें बाहर जाने दे रहे हैं, ना किसी को यहाँ आने दे रहे हैं। एक महीने से बिट्टू अपने रूम में बंद है, ना किसी से मिलना ना बात करना। हस्ती खेलती बच्ची कितनी गुमसुम और उदास हो गई है, ऐसे तो वो अंदर ही अंदर घुट जाएगी। भगवान ना करे अगर डिप्रेशन में चली गई, अपने साथ कुछ गलत कर लिया, फिर क्या करेंगे हम, कौन जिम्मेदार होगा इसका?
डैड, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है ताकि नित्या दोबारा वो गलती कभी ना करे। मैंने पहले कभी तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई ना, आज तक उसका जो दिल किया उसने किया, पूरी आज़ादी मिली उसे, लेकिन उसने मेरी दी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया है और उसे इसकी गलती का एहसास दिलाना, सज़ा देना ज़रूरी है। मिस्टर शेरगिल ने गंभीरता से अपनी बात उनके सामने रखी। और कितनी सज़ा देंगे आप उन्हें, एक महीने से वो इस घर में बंद है? दादाजी के सवाल पर मिस्टर शेरगिल का जो जवाब आया, उसने दादाजी को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। टू बी कंटिन्यूड।